इस चीज को उन्होंने बतलाया। ऊर्जा के बिना, शक्ति के बिना शक्तिमान बढ़ नहीं सकता, इसलिए शक्ति के साथ में श्रीमती राधिका के साथ में सत्यम परम धीमे, और उसी के अर्थ में जितने एक एक शब्द का उसी में उसी के अनुरूप में अलग अलग अर्थ निकाले। सबसे विचित्र बात है, उन्होंने सत्यम परम धीमे ही में श्रीमती राधिका जी की विशेष रूप में वंदना की। यह श्लोक श्रीमती राधिका के लिए ही है, क्योंकि श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है प्रेम कैवल्यैक प्रयोजनम। यहाँ पर केवलया भक्त्याम कल मैंने बतलाया था, कल ही आरंभ हुआ था, कल ही बतलाया केवलया भक्त्या, यही केवला भक्त्या ही प्रयोजन है। लीला हरि लीला कथा ब्राता, ब्राता माने समूह, तो ये हरि लीला कथा ब्राता एव अमृतम, यही अमृत स्वरूप है। बल्कि अमृत से तुलना देना उस कथा की महिमा को कम करने देना हुआ। कहां भक्ति रूपी प्रेम अमृत, कहां कृष्ण के हृदय में विराजमान रहने वाला यह शुद्ध सत्व के अंतर्गत में ये जो प्रेम है लादनी और संबित का सार, और कहां श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति जो संबित और लादनी का जो सार है, उस प्रेम की तुलना पहले अमृत से संभव है, इसे कभी भी संभव नहीं है। जगत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए दिखलाने के लिए ऐसा कहा था, यथार्थ में इसका कोई उदाहरण ही नहीं है। साखा चंद्र न्याय से भी नहीं कहा जा सकता उसको, इसलिए उन्होंने बतलाया कि ये हरि कथा ही एकमात्र अमृत है, ये हरि लीला कथा ही प्रयोजन है, यही कैवल्य है। ये तो अमृत हुआ, किंतु उसका उसकी उसके अनुभव क्या है, आनंद जिसमें प्रमत्त हो उठते हैं, कौन सा आनंद, मनमथ मनमथ रात के बीच में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, मिले सब प्रकार की गोपियां, तरह तरह की गोपियां उनके सामने में खड़ी हो गई और किस किस तरह से अपने नेत्रों से अपने हाथों से अपने कंधों पर उनका हाथ लेकर के अभिवादन कर रही है। उसमें श्रीमती राधिका जी के जो भाव अद्भुत हैं, इसलिए मनमत मनमत कृष्ण को बतलाया गया। यही प्रेम जो राधिका जी का कृष्ण के प्रति है, यही प्रयोजन है। केवल, केवल माने यहां पर शुद्ध, कैसे शुद्ध, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुचलम, यही केवल भाव जिसमें संसारिक लोक के सुख इत्यादि की तो बात ही क्या, दुख को दूर करने की बात ही तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति रहे, इसको भी छोड़ दो, बहुत दूर नीचे की बात, इससे भी बहुत ऊपर स्वर्ग इत्यादि की भी छोड़ दो, स्वर्ग से भी ऊपर मोक्षामृत जो कहलाता है, इसको भी दूर से प्रत्याग करो, किसी प्रकार की लौकिक पारलौकिक किसी प्रकार के सुख की अभिलाषा न रहे। सबसे पहले व्यास जी ने अपने गुरु को कैसा सम्मान दिया, किस प्रकार से सम्मान दिया, अपने रोगी बने, मुझे बड़ी अशांति लग रही है, आप कोई दवा दें, बतलाए ये रोग क्या है, रोग का निदान कीजिए। कजे रोग तो मैं देख रहा हूं, तुमने लीला कथाएं कृष्ण की नहीं वर्णन की, कृष्ण स्वयं भगवान ने इसको नहीं बतलाया, तुमने अच्छी तरह से लिखो कृष्णस्तु भगवान, तुमने ध्रुव प्रहलाद चरित्र इत्यादि सर्वत्र तुमने लिखे, आपने वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्र का संकलन किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की जिसमें स्त्री शूद्र सभी लोगों का अधिकार है आपने प्रणयन किया, प्रकाशित किया, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 शाखा पुराण, 54 पुराणों को आपने प्रकाशित किया, महाभारत के अंतर आपने गीता का भी प्रकाश किया, किंतु फिर भी आपको शांति नहीं, आपका चित्त खुश क्षुब्ध है, क्यों? इसलिए क्षुब्ध आपने कृष्ण का शुद्ध जो लीलाएं हैं उनकी शुद्ध लीलाएं हैं इसका आपने वर्णन नहीं किया, आपने ये दिखलाए नहीं कि ब्रज के परिकर लोग कृष्ण को कैसा स्नेह करते हैं, विशेष करके शांतरस का ब्रज में प्रवेश नहीं, बहुत मंद गति से अलक्षित रूप में निवास करता है। यदि कहें कि ब्रज में वो है ही नहीं है तो अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं, किंतु अलक्षित रूप में जमुना के किनारे उपकूलों में वो वहां के रेतियों के अंदर में दबा हुआ है, जहां पर कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, उनकी चरण धूलि के अंदर में नीचे दबा हुआ है, प्रकाश नहीं है, शांत रस का है। यद्यपि पेड़ पौधे गायें को शांत रस पाला जाता है, किंतु इसमें से कोई भी शांत रस नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म इत्यादि में भी ऐसा लिखा, यहां की गायें कौन है, बात्सल्य रस से भरी हुई है, बछड़े कैसे हैं, शक्कर रस से भरे हुए हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, कृष्ण की फूलों के ऊपर में वर्षा कर रहे हैं, मधु धारा दे रहे हैं, और फूल से भरे भरे होकर के उनके चरणों में पुष्प की अंजलि दे रहे हैं, और कभी उनका आलिंगन करते हैं, इनको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इनमें कोई सखा है। लताएं क्या हैं, वृंदावन की ऊपर में उठिए सखा लोग, सखरस। वृंदावन में शुद्ध दास भी नहीं है, कैसा दास है, भागवत में इसको पढ़ने से ही आप लोग समझेंगे। नंद बाबा के घर में जो दास हैं, कृष्ण की गोदी में लेकर के उनको दुलार कर रहे हैं। हनुमान ने ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संभव बात नहीं है, इसलिए वो या तो बात्सल्य और सख्य मिश्रित रहता है। वो सखा कैसे हैं, प्रिय नर्म सखा लोग हैं। गोपियां कैसी हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग इसी को अधिकार देने के लिए श्रीमद्भागवत अभी पहुंचे हुए हैं। इसकी व्याख्या यदि पढ़नी है, अच्छी तरह से समझना है, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा आगे, बिना चैतन्य चरितामृत पढ़े हुए इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, हमारा तो ये अभिमत है, नहीं प्रवेश कर सकता। और अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए वहां महा सौभाग्यवान कोई जीव हो, पूर्व जन्म की भी ऐसी सुकृति हो, संस्कार ऐसा हो, इस जन्म का संस्कार हो, तो रूप गोस्वामी के ग्रंथों को मैं समझता हूं। रूप गोस्वामी के अभी अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथों के माध्यम से तब रूप गोस्वामी को लोग समझें, और तब फिर इसमें प्रवेश करने की चेष्टा, तब कुछ कुछ समझ में आएगा। इसी से समझो, अहम वेद्मी सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न चकीचया। बुद्धि से, टीका से, पढ़ने से, अधिक सुनने से भी, कंठस्थ करने से भी नहीं समझ में आएगा। कौन कह रहा है ये श्लोक, अहम वेद्मी सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। परम रसिक भाव कृष्ण के अभिन्न हृदय, परम साधु वैष्णव वैष्णवानां यथा, ये शंभु जी कह रहे हैं, दूसरा ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए ये साक्षात रसिक भाव के जो भक्त हैं, कृष्ण से कहीं कहीं अभिन्न से जब दिखते हैं, किसी किसी विषय में, किस विषय में, सेवक के रूप में, वो इनको जानते हैं कुछ कुछ। और सुखदेव कुछ कुछ जानते हैं, क्यों, क्यों वो जानते हैं कि ये राधा जी के सुख हैं। और जानता है कौन, व्यास जी, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको पता नहीं। ये कहना कृष्ण के लिए भी हो गया, या ऐसे समझो मुक्त प्रग्रह वृत्ति से, कृष्ण भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कोई ठीक नहीं। हां जान सकते हैं कब, जब विशाखा से भेंट होगी, राय रामानंद से भेंट होगी गोदावरी के तट पर, और उनको मंत्र की दीक्षा देंगे कहीं, तब जाकर के उनको भी इस चीज का होगा, तब जगत में इस चीज को प्रकाश करेंगे, अनर्पित चरिंग किरात करुणियावत। इसलिए चैतन्य चरितामृत का पढ़ना, गोस्वामियों की दया होना, उस परंपरा में आकर के धारा में, अब तक जो धारा प्रवाहित हो रही है कहां से, कृष्ण से स्वयं, ब्रह्मा नारद इत्यादि के माध्यम से, अब तक जो ये हम लोगों की ब्रह्म माध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की जो धारा आ रही है, उसमें यदि कोई एक थोड़ा सा भी डुबकी लगे, या कोई वैष्णव उसका पानी लेकर के थोड़ा सा छींटा दे दे, तो ये भागवत यथार्थ में समझ में आएगी। अभी नारद ऋषि का उपाख्यान चला, सुखदेव सुन व्यास जी को उन्होंने कहा आपने कृष्ण लीला चरित्र को कहीं वर्णन ही नहीं किया, आपने शुद्ध रूप में कभी लिखा ही नहीं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तो भगवान का ही निर्णय नहीं हुआ और आपने जो भगवत्ता का निर्णय किया है वो भी ठीक ढंग से नहीं हुआ, मेरे समझ से पूर्णांग रूप में नहीं हुआ। आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं उसमें भगवत्ता का निर्णय आपने ऐश्वर्य से किया, ऐश्वर्य प्रधान से, जिसका जितना ही ऐश्वर्य है वही भगवान है। किंतु नर लीला कृष्ण का अपना रूप है और उनकी लीलाएं बड़ी माधुर्यपूर्ण है। भगवत्ता का सार क्या इन्होंने बतलाया चैतन्य चैतामृत में, भगवत्ता का सार बोला माधुर्य कृष्ण का, ऐश्वर्य नहीं। तो आपने अभी तक तो यही सब आपने सब लिखा, नारायण भगवत्ता है, भगवत्ता के सार है। राम लीला का भी वर्णन, कृष्ण लीला का भी वर्णन किया, किंतु आपने थोड़ा सा कुछ शंका खड़ी कर दी। आपने कह दिया आप श्वेत और कृष्ण केश के अवतार हैं, किनके? जो नारायण है गर्भदशाई और बूढ़े होने जा रहे उनके केश कैसे हो गए हैं श्वेत और श्याम? आदमी प्रौढ़ होता है तभी तो होता है, तो आपने उनको भी बना दिया प्रौढ़ बना दिया। अरे भगवान का स्वरूप सब समय किसी भी रूप में हो किशोर होता है, उनकी न तो दाढ़ी होती है न गोछ होती है न वो बूढ़े होते हैं न कहीं, आज तक तो भगवत अवतार का कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया। आपने उसमें शंका लगा दी जो उसके अवतार हैं, कहीं कह दिया जी आप नर नारायण के अवतार हैं कृष्ण, कहीं कुछ कर दिया। कभी कभी तो शंकर के तत्वों को आपने इस प्रकार से वर्णन किया जो मानो शंकर ही सबके प्रभु। कभी समस्त लोगों का तेज मिल करके दुर्गा जी हो गई और यही सबकी जननी हो गई, ऐसा भी लिख दिया। अरे स्पष्ट करके लोगों के सामने इस बात को रखिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं और उनके लीलाओं का वर्णन करें। बस वहां से आए व्यास जी चले गए श्याम प्रस्थान में और बोले क्या भक्ति योगे न मनसा सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुष संपूर्ण मायांच जदा पाशया। पुरुष को उन्होंने परिपूर्ण रूप में देखा, परम पुरुष को, आंशिक रूप में नहीं। आंशिक रूप में कौन है? राम आदि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन क्रोधि नाना अवतार किंतु भुवनेश किंतु कृष्ण समवद पूर्ण परमात्मान जो गोविंदमादि पुरुषम तम। राम आदि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन, राम इत्यादि ये सब कला माने अंश के अंश, कला कोई कोई अंश के अंश के अंश के कला विकला हैं, शेष जी वैसे ही हैं। इसी तरह से जैसे एक चंद्र के 16 कलाएं होती हैं उसी प्रकार से एक ही परम तत्व है, वदन्ति तत्व विदत तत्व ज्ञानम अर्जुन, इसका भी पाठ हुआ है। वदन्ति तत्व विदत तत्व ज्ञानम अर्जुन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। इसमें ब्रह्म आंशिक तत्व है, कौन? केवल मात्र सच्चिदानंद में से केवल चित्त के विकृत प्रतिफलन आंशिक रूप में है, कौन? ब्रह्म। शुद्ध चित्त भी नहीं, विकृत प्रतिफलन है उसके। और परमात्मा जो है उनके अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश के अंश हैं, यह है साक्षी विष्णु के रूप में। ये सत और चित के आंशिक ये अंश है, इनमें सत्य है रूप भी है, इसमें कुछ गुण भी हैं, वो चिन्मय है ये बात तो ठीक है, किंतु आनंद तिरोहित है। इसलिए बतलाया गया हमारे गुरु जी का एक उदाहरण उसमें, परम परमात्मा परम ब्रह्म ये कौन है? भगवान है। ये भगवान कौन है? नारायण इत्यादि भगवान है, राम भगवान है। इसलिए व्यास जी जब ने परिपूर्ण पुरुष को देखा तो किस रूप में देखा? स्वयं जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन नंदनंदन राधानाथ इनको देखा, केवल ऐसे नहीं रास बिहारी के रूप में देखा, और समस्त परिकरों के साथ में कृष्ण के जितने भी परिकर हैं समस्त परिकरों के साथ उनको देखा, परिपूर्णतम रूप में समस्त रसों से परिपूर्ण देखा उनको। जैसे मथुरा में मथुरा वाली रमणियों ने कृष्ण को किस रूप में देखा, वहां पर बतलाया गया कंस के सभा में जबकि रंगेश्वर में पहुंचे तो 12 प्रकार के लोगों ने 12 प्रकार से कृष्ण को, एक ही कृष्ण को देखा। जब मथुरा में ही ऐसी बात है तो वृंदावन में ना जिन्हें यहां पर जो बंसीवट है और राधा कुंड में ना जिन्हें क्यों कैसे तत्व प्रकाशित होंगे। यहां पर गोपियां कृष्ण के विरह में बिलबिला रही हैं और राधा कुंड में कृष्ण ही बिलबिला रहे हैं। राधा चिंता निवेशेना जस्य कांति विलोकिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम, ये भागवत का संदेश है। इसके बाद उन्होंने देखा और तब जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया। शोक मोह भयापह, जगत के शोक को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, किंतु मेरे समय कुछ होता है जो प्रपादो ऋषय और परोक्षवाद मम प्रिय, इसे कुछ और ही इंगित देते हैं। कौन सा शोक, कौन सा मोह, कौन सा भय, उसको दूर करने के लिए जो ब्रजवासी हैं कृष्ण के विरह में जो अत्यंत दुखी हैं, अग्नि में विरह अग्नि में जो जल रहे हैं, कृष्ण फिर जाए, ये सब का दूर करने के लिए और गौ के रूप में जगत का शोक मोह काम क्रोध राग मद मोह लोभ इत्यादि अनर्थ अपराध ये सब को दूर करके सुकृति जन्न जो दोष उसको सब दूर कर शुद्ध नाम में शुद्ध भगवत कथा में रुचि देने वाले और धीरे धीरे क्रमशः रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम, इस शरीर में इस साधन में नहीं होगा जितना भी कोई करे, प्रकट ब्रज में यह हो सकता है। इस तरह से शोक मोह भयापह श्रीमद् भागवत का उन्होंने प्रकाश किया। सुनकर के देख करके बड़े विस्मित हुए और सोचा कि इस जगत में किसको पढ़ाए। देखा जो जगत में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो इसके लिए योग्य हो। हजारों वर्ष तक चिंतन प्रभु ने देखा इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए तो सुखदेव गोस्वामी को पुत्र के रूप में भेजा और सब कथाएं आप लोग जानती हैं या जानते हैं। इस तरह से उनको आकर्षित किया, जन्म लेते ही वो चले गए वन में। जब चले गए तो उनको कैसे बुलाएं, सुनते हैं बहेलियों के माध्यम से श्लोक भेजवाए मंत्र के रूप में, बरहाड़ नटवर बपु, और दूसरे दिन भेजवाया अहो बकीय, और सुनते हैं कि एक और श्लोक भी अंत में भेजा, निवृत्त तरसई उपगीयमाना बहुत सदाश्वत्रि मनोभिरामा कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात विद्यत बिना प्रशुभनाथ का। अरे मैं अपनी आत्मा को हनन करने वाला तो नहीं हो रहा जो इस कथा से वंचित हूं। निवृत्त तर्क हुई तो ठीक है किंतु बाकी ये जो कथाएं तो सुनी नहीं, हमारा जीवन बेकार का जाएगा, मैं आत्मघाती हो जाऊंगा यदि इस कथाओं को नहीं सुनूं। दौड़ करके इनके यहां आए, मुझे आपने किस ग्रंथ में किसको प्रणयन किया जिसमें ये ऐसे ऐसे सुंदर कहे, तो बैठो कहीं बीच में भाग मत जाना और सुनो। तब वो जो निवृत्त परक सुखदेव गोस्वामी थे जो बाहरी रूप में ऐसा दिखते हैं वो क्या श्लोक है भाई, जैसे ऐसा होने पर भी श्रीमद् भागवत का अध्याप अध्ययन कराया? नहीं नहीं, मैं निर्विवादी या क्या था, निर्गुण्य परिनिश्चितो निर्गुण्य अपि, मैं निर्गुण्य ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में परिनिश्चित था, मैं आत्माराम आत्मकाम था। तो भगवान की लीला कथाओं को सुनकर के हमारे अंदर इनको अध्ययन करने की लालसा जगी और इनको अपने हृदय, इसलिए आपके पास में आया। तब उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पाठ कराया सुनाया और तब फिर उन्होंने बताया कि नारद ऋषि चातुर्मास्य में अपने गुरु वर्गों के आने पर उनके चरण की धूलि, चरण का जल और मुखामृत, मुखामृत दो प्रकार और उचित हरि कथा, हरि कथा सबसे बलवान है। इस प्रकार का थोड़ा सा भी सेवन करने से किस प्रकार से मनुष्य का श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ऐसे वैष्णवों का पाना भी बड़ा दुर्लभ है, भगवान का मिलना सहज है यदि ऐसे वैष्णव मिल जाए, ऐसे रसिक भागवत, भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं यदि ऐसे मिल जाए, मिलना कठिन है ये ऐसे लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को पहले ही ये सब बतलाया, भगवान का मिलना सहज है किंतु बड़ा कठिन है इन महापुरुषों का मिलना। उन्होंने ध्रुव चरित्र, जब तक कामना वासना रहेगी भाई भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें यदि गुरु सब गुरु मिल जाए, नारद जी जैसा जैसा उनको मिल गए, थोड़ा सा निर्देशन किया, किंतु वो बेचारे के अंदर में कुछ कामनाएं भरी थी, नारद जी इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कठोर तपस्या की, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसा कोई कठिन तपस्या नहीं किया था, किंतु थोड़ी सी कमी रह गई, अशुद्ध कोई अनुगत्य नहीं रहा, अनुराचिता सुनने ये नहीं रहा, कुछ कामनाएं वासनाएं थी, किंतु नारायण की जो उपासना की और नारद जी जैसे गुरु मिल गए, इसलिए अपनी सकामता को पूर्ण करके, उनकी मनोकामना पूर्ण करके फिर क्या किया, थोड़ा सा भगवान की तरफ मुंह बढ़ा दिया, उनको ऐसा ध्रुव लोक दे दिया, इसको भी वैकुंठ लोक कहते, उनको दे दिया, किंतु प्रेम रस नहीं दिया जो भागवत का है, इसलिए उनमें कमी थी। इसी तरह से और भी चरित्र, चित्रकेतु महाराज इत्यादि के सब बतलाएंगे, क्रमशः आगे हम लोग चलेंगे। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको बतलाएंगे, उसके पहले मैं अब पूज्यपाद महाराज जी से निवेदन करेंगे, 2-1 कुछ अपने उपदेश से श्रीमद् भागवत के संबंध में बोल करके तब हम लोग अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे, और जैसा रोज प्रवचन होता है वैसा होता रहेगा। प्रतिदिन मैं इनसे निवेदन यह भी करता हूँ, 3-4 दिन रहेंगे यहाँ, उसमें प्रतिदिन यदि 10 मिनट समय दें तो सबका बड़ा भारी उपकार होगा, ऐसा निवेदन करके और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, 2-4 मिनट के लिए दे दो।